क्या बोले?
ये जो हमारी सेना है वो भरी है,
और सामने भी ये सागर,
दूसरा सागर है तो दूसरी सेना भी जो है वो दूसरे सागर
भी बड़ा।
ऐसी दशा में आप लोग समुद्र के पार जाने के लिए कौन सा उपाय ठीक समझते हैं? उपाय को नुभवताम मता सागर लंघने यम ही महती सेना सागर अति दुस्तरा। तब वहाँ बहुत से दूसरे दूसरे वानर जो बड़े अभिमानी थे कहने लगे, हम तो समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हैं, परंतु तो सब नहीं लांघ सकते, सब तो लोग नहीं लांघ पाएंगे, हम लोग कर। तत्राण्य व्याहरंती इसमें वानर बहुमानिन समर्था लंघने सिंधो न तो तीर्थन कार्यक्रम। कुछ वानर बड़े बड़े नावों के द्वारा समुद्र के पार जाने का निश्चय प्रकट करने लगे। नाव बना लेंगे, ये बानर तो बात भी करते हैं,
बात भी करते
नहीं, ये बानर अलग है, ये इससे ये साधारण बानर है, ये किमपुरुष है, ये किमपुरुष है, ये किमपुरुष जाति के बानर है। ये बोलते भी हैं और इनका शरीर जो है मनुष्य की तरह भी कार्य करता है पूरा, और जो है मुख जो है इस तरह का होता है बानर का, ये किमपुरुष जाति के बानर। कुछ बानर बड़े बड़े नावों के द्वारा समुद्र के पार जाने का निश्चय प्रकट करने लगे। कुछ ने नाव डोंगी आदि विविध साधनों द्वारा पार जाने की बात बताई, परंतु श्री राम ने उनकी ये सलाह मानने से इनकार कर दिया और सबको सांत्वना देते हुए कहा, केचि नौभिर्व्यवश्यन्ति केचि च विविधैः प्लवैः नेतिरामस्तु तान् सर्वान् सान्त्वयन् प्रत्यभासते। वीरो, सभी वानरों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे सौयुजन विस्तृत समुद्र को लांघ सकें, अतः तुम लोगों का ये निर्णय सर्वमान्य नहीं है। सतयोजन विस्तारम न सकता सर्व वानरा क्रांतुम तो ये निधिम्बीरा न सा वो नीमती। इतनी बड़ी सेना को पार उतारने के लिए हम लोगों के पास अधिक नौकाएं भी नहीं हैं। मेरे जैसा पुरुष अपने स्वार्थ के लिए व्यापारियों के व्यवसाय को हानि कैसे पहुंचा सकता है? वे व्यापारियों की जो जहाज हैं वो इस्तेमाल करें, तो प्रभुपाद कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए व्यापारियों का नुकसान। हाँ भगवान बोले हैं, ऐसा बोला मुझे कुछ पता नहीं है।
व्यापारी तो प्रभु आदि करते हैं, व्यापारियों के कार्यों बाधा नहीं डालते प्रभु बात।
विस्तीर्णम च विनाशन्यम हन्या छिद्रेण वैपर प्लवोडुप प्रतारश्चा नैवात्र मम रोचते। मैं तो किसी उपाय से समुद्र की ही आराधना आरंभ करूंगा, इसके तट पर अन्न जल छोड़कर धरना दूंगा, इससे ये अवश्य मुझे दर्शन देगा तथा कोई मार्ग दिखलाएगा। अहम तो मम जल निधिम समारप्स्याम्युपायतः प्रतिशेष्याम्युपिबसन् दर्शयिष्यति माम ततः। यदि वह स्वयं प्रकट होकर कोई मार्ग नहीं दिखलाएगा तो मैं अग्नि और वायु से भी अधिक तेजस्वी तथा कभी ना चूकने वाले महान दिव्यास्त्रों द्वारा इसे जलाकर भस्म कर डालूंगा। नचेन्द्र से ता मार्गम धक्ष्याम्यनम अहम ततः महास्त्रेरपति हतैर अत्यग्नि पवन उज्ज्वल। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने आचमन करके समुद्र के दर पर कुशा की चटाई बिछाकर उस पर लेटकर विधि पूर्वक धरना दे दिया। इत्युक्ता सा सौमित्री रूपस्पृश्याथ राघव प्रतिशिष्य जलनिधिम विधिवन कुश संतरे। तब नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र देव ने जल जंतुओं के साथ प्रकट होकर स्वप्न में श्री राम को दर्शन दिया। ना शॉर्टकट है। सागरस्तु तथा स्वप्ने दर्शयामास राघवम देवो नद नदी भरता श्रीमान यादव गणेश। वो सैकड़ों रत्नों से घिरा हुआ था, उसने कौशल्य नंदन कहकर श्री राम को संबोधित किया और मधुर वाणी में कहा, कौशल्या मातरित्येवम् आभास्य मधुरम वचः इदमित्याह रत्नानाम् आकर्षत सुवृतः। कहो मैं यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूँ, सगर पुत्रों से संवर्धित होने के कारण मैं भी इक्ष्वाकु वंशित और तुम्हारा भाई बंधु हूँ। ये सुनकर श्री राम ने उससे कहा, ब्रूहि किम ते करोम्यत्र साहाय्यं पुरुषर्षभ इक्ष्वाकु हस्मिते ज्ञाति इति रामस्तम ब्रवी। हे समुद्र, मैं अपनी सेना के लिए तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मार्ग चाहता हूँ, जिसे जाकर पुलस्त कुलांगार दशमुख रावण को मार सकूँ। मार्गम इच्छामि सैन्यस्य दत्तम नदे नदीपते ये निगत्वा दशग्रीवम हन्याम पौलस्ते पांसनम। यदि इस प्रकार याचना करने पर तुम मुझे मार्ग ना दोगे तो मैं दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा तुम्हें सुखा दूंगा। यदि एवं याचतो मार्गम न प्रदास्यति मे भवान सरेस्त्वां शोषयिष्यामि दिव्यास्त्र प्रति मंत्रितय। श्री राम गए वचन कर श्री राम का ये वचन सुनकर समुद्र व्यथित उठा और खड़े हुए हाथ जोड़कर बोला, इत्येवं ब्रुवतः श्रुत्वा रामस्य वरुणालयः उवाच विदितो वाक्यम इति बद्धांजलि स्थितः। श्री राम, मैं तुम्हारा सामना करना नहीं चाहता और न मैं तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने की ही इच्छा रखता हूँ। मेरी ये बात सुनो और सुनकर जो कर्तव्य हो उसे करो। नेच्छामि प्रतिघातम ते नास्मि विग्रह करस्तव शृणु चेदम वचो राम श्रुत्वा कर्तव्यमाचर। यदि मैं इस समय तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें और लंका जाती हुई तुम्हारी सेना को मार्ग दे दूंगा तो दूसरे लोग भी इसी प्रकार धनुष के बल से मुझ पर हुक्म चलाया करेंगे। यदि दास्यामि ते मार्गम सैन्य से ब्रजतो गया अन्य प्याज्ञा पयिष्यन्ति मामेवं धनुषो बलात्। तुम्हारी सेना में एक नल नामक बानर है जो शिल्पियों के लिए भी आदरणीय है। बलवान नल देव शिल्पी विश्वकर्मा का पुत्र है। अस्ति तत्र नलो नाम वानरा शिल्पी सम्मतः तस्तुर्देवस्य तनयो बलवान विश्वकर्मणः। वो अपने हाथ उठाकर जो भी काठ तिनका या पत्थर मेरे भीतर डाल देगा वो सब मैं जल के ऊपर धारण किए रहूंगा, वही तुम्हारे लिए पुल हो जाएगा। सयत काष्ठम तृणम्बापि शिलां वा क्षेप्यते मयि सर्वं तं धारयिष्यामि सते सेतुर्भविष्यति। कहीं पर तो हमने ऐसा पढ़ा या सुना है कि नल और नील ये दो भाई थे ना विश्वकर्मा के पुत्र, तो ये जो है बचपन में क्या करते थे कि बहुत चंचल थे तो ऋषि मुनियों की सालग्राम शिला जो है कुएं में डाल देते थे तो डूब जाती थी सालग्राम शिला। ऋषि मुनि ने उनको साप दे दिया कि तुम जो कोई भी पानी में अगर डालोगे तो तैरेगी वो। तो वो जो है वो साप अब वरदान हो गया, तो वो अपने हाथ से जब डालेंगे सिलाएं तो तैरेंगे। सैयद काष्ठम तृणम वापी शिलाम वा क्षेप्यते मयी सर्वम तम धारयिष्यामि सते सेतुर्भविष्यति। ऐसा कहकर समुद्र अंतर्धान हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने उठकर नल से कहा, तुम समुद्र पर एक पुल तैयार करो, मैं जानता हूँ तुम में ये कार्य करने की शक्ति है। इत्युक्त्वान्तर्हिते तस्मिन् रामो नलम वाचः कुरुषे तुम समुद्रे तुम शक्तो यसीमतो मम। उसी उपाय से श्री राम ने समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार कराया। 120 किलोमीटर तो चौड़ा है, 10 योजन और 1200 किलोमीटर लंबा।
बद्री काशी
में आशीन नहीं होगा, 1200 किलोमीटर यहाँ से कलकत्ता,
इसमें तो इतने शहर आ गए उसमें से
इतना बड़ा और 120 किलोमीटर दिल्ली के बराबर चौड़ा है ना, दिल्ली की एक कोने से दूसरे कोने तक जितना बड़ा। अच्छा हाँ, दिल्ली से वृंदावन तक इतना चौड़ा पुल,
दोनों धाम आ गए वृंदावन दिल्ली भी है,
सेतु बंधम कारयन् दस योजन विस्तारम आयतम सत योजनम। वो आज भी भूमंडल में नल सेतु के नाम से विख्यात है। श्री राम की आज्ञा मानकर समुद्र ने उस पर्वताकार पुल को अपने ऊपर धारण किया। नल सेतु ख्यातो योद्यापि प्रतिदो भुवि रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य निर्यातो गिरिसन्निभाम्। श्री राम भी समुद्र के किनारे ही थे कि राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण अपने चार मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए आए। तत्रस्थम सतु धर्मात्मा समागच्छन् विभीषणः भ्राता वै राक्षसेन्द्रस्य चतुर्भिः सचिवैः सह। श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें अपनाया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि कहीं ये शत्रु का कोई गुप्तचर ना हो। प्रतिजग्राह रामस्तम स्वागते न महामनाम सुग्रीव से तु शंका भूत प्राणधि प्रणधि स्यादति स्महाम। परंतु श्री राम ने उनकी सत्य चेष्टाओं उत्तम आचरण और मुख नेत्र आदि के संकेतों से सूचित होने वाले मनोभावों की समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष प्राप्त कर लिया तब विभीषण का बहुत आदर किया। राघव सत्य चेष्टा भी सम्यक चाचरित अंकित यदा तत्व तुष्टो भूत तद एनम अपूजयन। साथ ही उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और लक्ष्मण का सुहृद और अपना सलाहकार बना लिया। सर्व राक्षस राज्य चा प्यभ्य सिंचन विभीषणम चक्रे चा मंत्र सचिवम सुहृदम लक्ष्मण से चा। विभीषण की सलाह से श्री राम ने उसी सेतु द्वारा एक ही महीने में सेना सहित महासागर को पार कर लिया।
एक महीना लग गया पार करने।
पूरी सेना वो तो एक समुद्र के बराबर।
बनाने में भी कुछ पाने कुछ
तीन दिन।
अच्छा
तीन। पार करने में एक महीना लग गया।
सेना तो दूसरे समुद्र के समान है। समुद्र मान लो कितना
बड़ा। एक महीने में एक समुद्र जो है दूसरे समुद्र को पार किया।
उस समय जो आए थे वो तो उड़ के आए, वैसे आए। अभी तो पैदल ही जाना है सबको ना।
विभीषण मते चैव सोतिक्रामन महार्णवम ससैन्यः सेतुना तेन मासे नैव नराधिपः। तत्पश्चात उन्होंने लंका की सीमा में पहुंचकर वानरों द्वारा वहां के बहुत से बड़े बड़े उद्यानों को छिन्न भिन्न करा दिया। ततो गत्वा समासाद्य लंकोद्यानान्यनेकशः भेदयामास कपिवीरमहान्ती च बहूनि च। उस सेना में वानरों का रूप धारण करके रावण के दो मंत्री सुक और सारण गुप्तचर का काम करने के लिए घुस आए थे। क्या समझे?
रावण के जो दो मंत्री सुक और सारण वो वानरों
का। किस लिए आए थे? विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर कैद कर लिया। ततस्तो रावणामात्यो मंत्रिणो सुख सारणो सर्व वानर रूपेण तो जंग्राह विभीषण। जब ये दोनों निशाचर अपने राक्षस रूप में प्रकट हुए तब श्री राम ने उन्हें अपनी सेना का दर्शन कराकर छोड़ दिया। जाओ देख लो सेना और जाओ। हाँ, कोई छिप करने की बात नहीं है, बिल्कुल सामने है।
देखो
वो छिप कर क्या है देखने के लिए कि उनको कोई ना देख पाए, कोई ना पहचान पाए। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम देख लो अच्छी तरह से जाके बताओ रावण को। प्रतिपन्नो यदा रूपम राक्षसम तो निशाचरम दर्शयित्वा तथा सैन्यम रामा पश्चात वासृजन। लंकापुरी के उपवन में वानर सेना को ठहरा कर श्री राम ने बुद्धिमान वानर अंगद को दूत के रूप में रावण के यहाँ भेजा। निवेशोपवने सैन्यम तत्पुरा प्राग्य वानरम प्रेषी आवास दौत्येन रावण से ततोंगदम। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि सेतुबंधने त्र्यशीत्यधिकद्विशततमोऽध्याय 283वां अध्याय। मार्कण्डेय जी कहते हैं युधिष्ठिर लंका की ओर से लंका के उस वन में अन्न और जल का बहुत सुविधा था, फल और मूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। अतः वहीं सेना की छावनी डालकर श्री राम विधि पूर्वक उसकी रक्षा करते रहे। प्रभूतान्नोदके तस्मिन् बहुमूल्य फले बने सेनाम निवेश काकुलस्थो विधिवन पर्यरक्षत। इधर रावण लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से बनी हुई युद्ध सामग्री का संग्रह करने लगा। लंका की चार दीवारी और नगर द्वार अत्यंत सुदृढ़ थे, अतः स्वभाव से वो दुर्धर्ष थी। किसी भी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना बहुत कठिन था। रावण संविधि चक्रे लंकायां शास्त्र निर्मितां प्रकृत्य वैदुराधर साधृढ़ प्राकार तोरणाम। नगर के चारों ओर 7 गहरी खाइयां थीं जिनमें अगाध जल भरा रहता था और उनमें मत्स्य मगर आदि जल जंतु निवास करते थे। इन खाइयों में सब ओर खैर के खूंटे गड़े हुए थे। अगाध तो या परिखा मीन न क्रय समाकुलाम अभू सप्त दुर्धर्षा खादिर संकुभिश्चिता। क्या
कुछ खतरा खतरनाक वस्तु
खादिर संकुभिश्चिता
कोई आ ना सके।
हाँ खूंटे का मतलब वो नुकीले थे। नुकीले नहीं वही कांटे जैसे जैसे
कांटे लगा देते दीवार पे खाली पूरे में लगा होना
नहीं ये पानी में खूंटे लगाए थे पानी के अंदर
मतलब
पानी के किनारे
पता भी नहीं चलेगा
किनारे
किनारे पानी से आएगा भी मान लो पानी भरा है मान लो
पानी से आएगा तो भी खतरा है कूद के आएगा तो भी खतरा है दोनों में है ना
मतलब खूंटे लगे कांटे
कूद के कोई जाएगा तो भी उसको लगेगा
मजबूत किवाड़ लगे थे और गोला बरसाने वाले यंत्र यथास्थान लगे थे। इनके सिवा वहां बहुत से श्रृंग और गोले जमा किए गए थे। इन सब कारणों से इन खाइयों को पार करना बहुत कठिन था। विषधर सर्पों के समूह सैनिक सर्दरस और धूल इन सब से संयुक्त सुरक्षित होने के कारण ये खाइयां दुर्गम थी। कपाट यंत्र दुर्धर्षा कभुवो सहुडोपलाम सासी विषय घटा योधा ससर्जरसे पान सवहाम। मुसल अलाथ बाण तोमर तलवार फरसे मोम के मुद्गर और तोप आदि अस्त्र शस्त्रों के संग्रह के कारण भी वे खाइयां दुर्लंग थीं। मुसल अलात नाराच तोम राशि परसुध अन्विता शास्त्रतग्नि भी समूह समधूच्छिष्टमुद्गराम। नगर के सभी दरवाजों पर छिपकर बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे। ये स्थावर गुल्म कहलाते थे और घूम फिर कर रक्षा करने वाले जो सैनिक नियुक्त किए गए थे वे जंगम गुल्म कहे जाते थे।
चौकियां बनी
होंगी इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार और घुड़सवार भी थे। पुरद्वारेषु सर्वेषु गुल्मास्थावर जंगमाम बभूवोपत्ति बहुला प्रभूते गजय वाजिनहाम। श्री राम की आज्ञा से महाबली अंगद दूत बनकर लंकापुरी के द्वार पर आए। क्या समझे राक्षसराज रावण को उनके आगमन की सूचना दी गई। फिर अनुमति मिलने पर उन्होंने निर्भय होकर पुरी में प्रवेश किया। अनेक करोड़ राक्षसों के बीच में जाते हुए अंगद मेघों से घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभित हो रहे थे। कोई डर नहीं करोड़ों कई करोड़ राक्षस के बीच में जा रहे हैं उनको कोई डर नहीं जा रहे रावण से मिलने के लिए। अंगदस्तुत है लंकाया द्वार देशम उपागत विदितो राक्षसेन्द्र से प्रवेश गत व्यथ मध्य राक्षस कोटीनाम भावीनाम सुमहाबल सुसुभे मेघमाला भी आदित्य एवं संवृता। मंत्रियों से घिर कर बैठे हुए रावण के पास पहुंचकर कुशल वक्ता अंगद ने रावण को संबोधित करके श्री राम का संदेश इस प्रकार कहना आरंभ किया। सासमासाद्य बोलस्त्यम अमात्यरभि संवृतम राम संदेश मंत्र वाग्मी वक्तुम प्रचक्रमे। राजन, कौशल के महाराज महायशस्वी श्री राम ने तुमसे कहने के लिए जो समयोचित संदेश भेजा है उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। आम राघवो राजन कौशलेन्द्रो महायशा प्रात काल मिदं वाक्यं तदा दत्स्व कुरुष्व च।
ठीक है, तुम देखो मैं 8 बजे आऊंगा। ठीक है।
क्या सुना? जो राजा अपने मन को काबू में न रखकर अन्याय में तत्पर रहता है उसका आश्रय लेकर उसके अधीन रहने वाले नगर और देश भी नष्ट हो जाते हैं। अकृतात्मान मा साध्य अकृतात्मान माथाध्य राजानम अनये रतम विनश्यंत्यने आविष्टा देशाशा नगराणी च। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके मेरा अपराध तो अकेले तुमने किया है परंतु इसके कारण अन्य निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। तो एक ना पराधम में सीताम आहता बलान वधायान पराधानाम अन्येषाम तन भविष्यति। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर पहले जिन वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया, राजर्षियों के प्राण लिए तथा रोती बिलखती अबलाओं का भी अपहरण किया, उन सब अत्याचारों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। ये तो या बलतर बाभ्याम आविष्टे ने बने चरा ऋषियो हिंसिता पूर्वम देवाश्चाप्यवे मानिता राजर्ष्यश्च निहता रुदत्यश्च हृता स्त्रियः तदम समनु प्राप्तम फलम तस्याना यश्चते। मैं मंत्रियों से तुम्हें मार डालूंगा, साहस हो तो युद्ध करो और पौरुष दिखाओ। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूँ तो भी मेरे धनुष का बल देखना। हंतास में त्वं सहामात्यैर युद्धस्व पुरुषो भवौ पश्चिमे धनुषो वीर्यम मानुषस्य निशाचर। जनक नंदनी सीता को छोड़ दो अन्यथा कभी मेरे हाथ से जीवित नहीं बचोगे। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। मुचताम जानकी सीता हमें मोक्ष से कर ही चिन्ह राक्षसम इमं लोकम करता अस्मि निशित सरय। श्री राम के दूत के मुख से ऐसी कठोर बातें सुनकर राजा रावण सहन न कर सका, वो क्रोध से मूर्छित हो उठा। एतदस्य प्रमाणस्य दूतस्य परुषं वचः श्रुत्वा नमृषे राजा रावण क्रोध मूर्छितः। तब स्वामी के संकेत को समझने वाले 4 निशाचर अपनी जगह से उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े उसी प्रकार वे अंगद के 4 अंगों को पकड़ने लगे। पक्षी शेर को पकड़े तो क्या होगा? इंगितज्ञात तो भरतुष चत्वारो रजनी चरा चतुर्संगेशु गृह जगृहु शार्दूलम् एव पक्षिणः। अंगद इस प्रकार अपने अंगों से सटे हुए उन 4 राक्षसों को लिए दिए आकाश में चलकर महल की छत पर जा चढ़े। उनको ले करके छत के ऊपर पहुंच गए।
नहीं, अभी तो चारों पकड़ रहे थे ना। चारों में पकड़े हैं, अगर मान लो 2 भुजा पकड़े, 2 पैर पकड़े हैं, तो उनको सही तो रावण
तांतथांगेषु संसक्तान् अंगतो रजनीचरान् आदाय विखमत्पत्ते प्रासादे तले महाविशद। और चलते समय उनके वेग से छूट कर बेचारों राक्षस पृथ्वी पर गिरे। उन राक्षसों की छाती फट गई और अधिक चोट के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। वेगेनोत्पततस्तस्य पेतुस्ते रजनी चराम भुविषम भिन्न हृदया प्रहारे वरे पीड़िता। छत पर चढ़े हुए अंगद फिर उस महल के कंगूरे से कूद पड़े और लंकापुरी को लांग कर सुबेल पर्वत के समीप आ पहुंचे। क्या है कथा बाधा पड़ रही है? हाँ क्या सुना? क्या सुना?
सुबेल पर्वत पर आ गए।
हाँ संसक्तो हर में शिखराद तस्मात् पुनर्वापतन लंघयित्वा पुरीं लंकां सुवेलस्य समीपतः। फिर श्री काम से मिलकर तेजस्वी वानर अंगद ने रावण के दरबार की सारी बातें बताई। श्री राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की फिर वे विश्राम करने लगे। कौशलेन्द्रम मथागम्य सर्वमा वेद्य वानरः विश्राम सतेजस्वी राघवेण अभिनंदितः। तब श्री राम ने वायु के समान वेगशाली वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा एक साथ लंका पर धावा बोल दिया और उसकी चार दीवारें तोड़वा दी। बहुत मजबूत थी, सब तोड़वा दी। तथा सर्वाभिसारेण हरिणाम बात रंगसाम भेदयामास लंकाया प्राकारम रघुनंदन। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बहुत कठिन था। क्या सुनिए? नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना कठिन था, बहुत कठिन था। परंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जामवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। द्वार को भी धूल में मिला दिया। विभीषण विभीषण लक्षाधिपति पुरस्कृत्याथ लक्ष्मण दक्षिणम नगर द्वारम अवामृत गाद दुरासदम। तत्पश्चात उन्होंने हथेली के समान सफेद और लाल रंग के बानरों की 10 खरब सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। 10 खरब 1000 अरब ना
संसार
की बड़ी सेना। हरिणाम युद्ध शालिनाम कोटि शत सहस्त्रेण लंकाम अभ्यपतत तदा। उनके भुजा ऊरु हाथ और जंघा ये सभी अंग विशाल थे और अंगों की कांधे धुएं के समान काली थी। ऐसे 3 करोड़ ऋष सैनिक भी उनके साथ लंका में जाकर युद्ध के लिए डटे हुए थे। प्रलम्ब बाहु रुकर जंघांतर विलंबिनाम ऋक्षाणाम धूम्र वर्णानाम तिस्रा कोट्यो व्यवस्थिता। उस समय वानरों के उछलने कूदने और गिरने पड़ने से इतनी धूल उड़ी कि उसे सूर्य की प्रभा नष्ट सी हो गई और उसका दिखना बंद हो गया। उत्पतन भी पतन भिश्चा निपतन भिश्च वानर ना दृश्यत तदा सूर्यो रजसानाशित प्रभा। राजन धान के फूल जैसे रंग वाले मौल श्री के फूल जैसे कांति वाले प्रातः काल के सूर्य के समान अरुण प्रभाव वाले और सनई के समान सफेद रंग वाले बाणों से व्याप्त होने के कारण लंका की चार दीवारी चारों ओर कपिल वर्ण की दिखाई देती थी। स्त्रियों वृद्धों सहित समस्त लंकावासी राक्षस चारों ओर आश्चर्यचकित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। साली प्रसून सदृश श्री से कुसुम प्रभय तरुणादित्य सदृश स्वर्ण गौर वानर प्राकारम ददृशुस्ते तो समन्तान कपिली कृतम राक्षसा विस्मिता राजन शस्त्री वृद्धा समन्तता। वानर सैनिक वहां के मणि निर्मित खंभों और अत्यंत ऊंचे ऊंचे महलों के कंगूरों को तोड़ने फोड़ने लगे। गोलाबारी करने वाले जो तोप आदि यंत्र लगे थे उनके शिखरों को चूर चूर करके उन्होंने दूर फेंक दिया। विभुस्ते मणिस्तंभान कर्णाट्य शिखराणि च भग्नोन्मथित श्रृंगाणी यंत्राणि च विचित्र। पहियों वाली तोपों श्रृंगों और गोलों को ले लेकर महान कोलाहल करते हुए वानर अपने भुजाओं के वेग से उन्हें लंका में फेंकने लगे। परिग्रह है शतग्निश्चा सचक्रा सहुरोपला चिक्षिपुर भुज वेगे ने लंका मध्य महासुनाम। तोपों को श्रृंगों को गोलों की हाँसी फेंक रहे। हरे कृष्णा। लोहे के गोले हैं
से बारूद वाला गोला नहीं होता
है। नहीं, यंत्र हैं, यंत्र है, गोले फेंकने वाले यंत्र हैं। जो कोई निशाचर चार दीवारी की रक्षा के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां खड़े थे वे सब बाणरों द्वारा खदेड़े जाने पर भाग खड़े हुए। प्राकारस्था से एक चिन्ह निशाचर्य गणा तथा प्रदुद्रुवस्ते तथा कभी समभिद्रुता। क्या सुना? तब राक्षस रावण की आज्ञा पाकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर नगर से बाहर निकले। उन सब की आकृति बड़ी विकराल थी। ततस्तु राज भजनाद राक्षसा काम रूपिणाम निर्विकृताकारा सहस्र शत संघ सहा। वे चार दीवारी की शोभा बढ़ाते हुए अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके वनवासी मांडवों को खदेड़ने लगे और अपने उत्तम पराक्रम का परिचय देने लगे। शस्त्र वर्षाणि वर्षन्तो द्रावयित्वा वनौकसः प्राकारं शोभयन्तस्ते परम विक्रममास्थिता। उड़द के ढेर जैसे काले कलूटे उन भयंकर निशाचरों ने लड़कर अपना उस चार दीवारी को बाणरों से सूने कर दिया। समासराशी सदृशैर बभूव क्षणदाचरै कृतो निर्माणरो भूया प्राकारो भीम दर्शन। उनके सूलों की मार से अंग विदीर्ण हो जाने के कारण बहुत से श्रेष्ठ बाणर धराशायी हो गए। इसी प्रकार बाणरों के हाथों से खंभों की मार खाकर कितने ही निशाचर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए और कितने ही वहीं ढेर हो गए। पेतो सूल विभिन्नांगा भावो बाण नरसभाम स्तंभ तोरण भग्नाश्चा पेतो तत्र निशाचरा। तत्पश्चात वीर राक्षसों का बाणरों के साथ सिर के बाल पकड़कर युद्ध होने लगा। सिर के बाल पकड़ कर युद्ध होने लगा। वे नाखून और दांतों से भी एक दूसरे को काट खा रहे थे। केशा केश भवन युद्धम रक्षसाम बाण रहसाम नखेरदंत वीराणाम खादताम वह परस्परम। दोनों ओर से गर्जना करते हुए वानर और राक्षस इस प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। निष्टनन्तो हि भयत् तत्र वानर राक्षसान हतान्य पतिताम भूमौ नमुंचन्ति परस्परम। उधर श्री राम भी जैसे बादल जल बरसाते हैं उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे और वे बाण लंका में घुसकर वहां खड़े हुए निशाचरों के प्राण लेने लगे। रामस्तु सरजालानी वर्ष जलदो यथा तानि लंकां समासाद्य जग्नुस्तान रजनीचराम। क्लेश और थकावट पर विजय पाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी सूचना दे देकर नाराज नामक बाणों द्वारा दुर्ग के भीतर रहने वाले राक्षसों को भी मार गिराने लगे। स्वामित्री रपि नाराचर दृढ़ धनवान जितैक्लमहम आदिश्यादि आदिश्यादिश्य आदिश्यादिश्य दुर्ग स्थान पातियामास राक्षसान। इस प्रकार लंका में भीषण मारकाट के बाद वानर सैनिक विजय पाकर श्री राम की आज्ञा से युद्ध बंद करके शिविर की ओर लौट आए तथा परम प्रत्यभारो भून सैन्यानाम राघवाग्याम कृते विमर्दे लंकायाम लब्ध लक्ष्यो जयोत्तराम। यदि श्री महाभारत एवं पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि लंका प्रवेशे चतुरशीति धके द्विशततम अध्याय 284 अध्याय पूरा हुआ। हाँ 284 अध्याय हुआ, मतलब कितने अध्याय हो गए
हैं? टोटल
91 291 अध्याय है। बहुत सुंदर कथा है,
बहुत
मार्कंडेय जी कहते हैं युधिष्ठिर जब वानर सैनिक शिविर में प्रवेश करने लगे, क्या सुनिए, हाँ मतलब युद्ध को जो है विजय पा करके अपने शिविर में, उस समय रावण के सेवा में रहने वाले परवण पतन जंभ खर क्रोधवश हरि प्ररुज अरुज और प्रघस आदि पिशाच और अधम राक्षसों के अनेक दलों ने आकर उन पर धावा बोल दिया।
अच्छा, जब शिविर की तरफ आ रहे
हैं। अच्छा जी, ये
पीछे से,
हाँ ये कपट युद्ध है ना इनका। ततो निविशमानांस्तान् सैनिकानां रावणानुगाम् अभिजग्मुर् गणानेके पिशाचः क्षुद्र रक्षसाम् परवणः पतनो जम्भा खरा क्रोधः वशो हरिम् प्रवृजश्चारुजश्चैव प्रघसश्चैव मादयाम्। ये दुरात्मा राक्षस अंतर्धान विद्या से अदृश्य होकर आक्रमण कर रहे थे, क्या समझे, अंतर्धान विद्या से दृश्य हो गए, नहीं दिखाई पड़ते और आक्रमण कर रहे हैं। विभीषण उस विद्या के जानकार थे, अतः उन्होंने उन राक्षसों की अंतर्धान शक्ति को नष्ट कर दिया। इस विद्या को जानते थे, अब वो छिप नहीं सकते, अंतर्धान नहीं हो सकते। ततो विप्रत ताम तेषाम अदृश्यानाम दुरात्मनाम अंतर्धान अवधम तज्ञ चकार ऐसा विभीषणाम। फिर तो वे सभी राक्षस वानरों की दृष्टि में आ गए, आप तो मरे नहीं, आप तो बच नहीं सकते। वानर बलवान तो थे ही, वे दूर तक उछल कर जाने की शक्ति रखते थे। वे सब ओर से कूद कूद कर उन्हें मारने लगे, उनकी मार खाकर वे सभी राक्षस प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब नहीं हो जाए बचे, भागने की भी उनकी शक्ति नहीं थी। ते दृश्यमाना हरिभिर बलिभिर दूर पाति भीम नेहता सर्वसोराजन महिम जगमतुर जगमुर्गता सभा। रावण के लिए ये बात असह्य हो उठी, बहुत ज्यादा हो गया, टू मच रावण के लिए। वो पिशाचों और राक्षसों की भयंकर सेना से घिरा हुआ दल बल के साथ लंका से बाहर निकला। अमृश्यमाणा सबलो रावणो निर्यावत है राक्षसा नाम बलैर घोर है पिशाचा नाम जसमृत।
क्या नहीं
आ
रहा ना, ऐसे मुख्य मुख्य लोग मारे जाते,
नाम अभी संक्षेप में, फिर भी कितना है, काफी दिया गया है, हाँ कई बातें ऐसी जो कहीं नहीं मिलती सब बातें। वो दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्र के विधान का ज्ञाता था। उसने शुक्राचार्य के मत के अनुसार व्यूह रचना करके सब बानरों को घेर लिया। युद्ध शास्त्र विधान आज्ञा उसना ए वैचा पर हम व्यू है चौसन संव्यूहम हरिनभ्य वह हारयन। श्री राम ने जब देखा कि रावण व्यूहाकार सेना को साथ ले नगर से बाहर निकल रहा है, तब उन्होंने भी उसने शास्त्र के विरुद्ध बृहस्पति की बताई हुई रीति से अपनी सेना का व्यूह बनाया। राघवस्तु विनिर्यान्तम् व्यूढानेकं दशाननम् बारहस्पत्यं विधिं कृत्वा प्रत्यव्यूहन् निशाचरम्। तब वहां पहुंचकर रावण श्री राम के साथ युद्ध करने लगा। दूसरी ओर लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। समय ते युद्धे तत्र ततो रामेण रावणः युद्धे लक्ष्मणश्चापि तथैवेन्द्रजिता सह। सुग्रीव ने विरूपाक्ष के साथ युद्ध किया। निखरवट नामक राक्षस तार नामक वानर से जा भिड़ा। नल ने निशाचर तुंड का सामना किया और पटुस नामक राक्षस पनस वानर के साथ युद्ध करने लगा। विरूपाक्ष ने सुग्रीव तारेण च निखरवट तुंडेन च नलस्तत्र पट्टसा परसेन च। जो जिसे अपने जोड़ का समझता था उसी के साथ उसकी भिड़ंत हुई। सब लोग युद्ध के समय अपने बाहुबल का आश्रय ले शत्रु का सामना करते थे। विषयम यम ही यो मे ने ससाते न समय इवान युद्धे युद्ध वीलायाम स्वबाहुबल महाश्रिता। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में जैसा भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ था उसी प्रकार वानरों और निशाचरों का वो युद्ध भयानक रूप से बढ़ता जा रहा था। वो संग्राम कायरों के भय को बढ़ाने वाला था। ससम प्रहारो वृद्धि भीरूणाम भय वर्धनाम लोमहन लोम संघर्षणो घोरा पुरा देवासुरे यथा। रावण ने शक्ति स्फूल और खड़ग की वर्षा करके श्री राम को बहुत पीड़ा दी तथा श्री राम ने भी लोहे के बने हुए तीखे बाणों द्वारा रावण को अत्यंत पीड़ित किया। इसी प्रकार युद्ध के लिए उद्यत रहने वाले इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मर्मभेदी बाणों द्वारा घायल किया और इंद्रजीत ने सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को अनेक बाणों द्वारा बींद डाला। रावणो रामम आनर्छन शक्तिशूला से पृष्ठभी निशतराय सैस्तीक्षण रावणम चापि राघव तथैवेन्द्रजितम यत्तम लक्ष्मणो मर्म भेदिभी इंद्रजित चापि स्वामित्रम भेद बहुभि सरे। इधर विभीषण प्रहस्त पर और प्रहस्त विभीषण पर पंखियों के तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों में से कोई भी व्यथा का अनुभव नहीं करता था। विभीषण प्रहस्तम चा प्रहस्तस्या विभीषणम खगपत्र सरस तीक्ष्ण रभ्य वर्षन गते व्यथा। बड़े बड़े अस्त्र धारण करने वाले उन बलवान वीरों का वो संग्राम इतना भयंकर था कि उसे तीनों लोगों के समस्त चराचर प्राणी व्यथित हो उठे। तेषां बलवताम आसीन महस्त्राणाम समागमः विभीषु सकलायेन त्रयो लोकाश्चराचरा। इति श्री महाभारते वन पर्वणि रामोपाख्यान पर्वणि राम रावण द्वंद्व युद्धे पंचाशीति द्विशततमोध्याय। अब आपको जो है लीलाएं सुनाएंगे, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। हाँ ये तो ठीक है। हाँ ये तो
हाँ ये जो है ना ये,
लेकिन ये क्यों निकल रहा है?
टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है थोड़ा,
ये इधर से निकल रहा है। नहीं आप वो देखो ना उन्होंने कैसे बनाया ये यहाँ।
चार नंबर
नहीं, ये भी यहाँ फंस रहा है। मतलब वो कैसे बनाते उनका देखो ना,
ये भी थोड़ा
फंस रहा है,
ये भी ऐसे हो रहा है ना, देख।
हाँ उनका काम अच्छा है।
जैसे ये अभी कह रहे ठीक है,
अभी छोड़ दो, अभी
कोई नहीं प्रभु देख लेगा। देख लेंगे आराम से, बहुत दृश्य को सुनाऊंगी उससे शुरू से ना सुना
एक आगे आओगे नहीं जाने अभी अभी रुकना है ना ये भी तो खत्म हो
इसको इसको साथ ही रखना पड़ता है एक एक
लक्ष्मी को भी दे
रुकना है
कितनी रहे हैं आप
अभी दो लाख तीन और लेऊंगा सुबह मंगलवार में
आज आज कुछ बनाया
ले वो प्लास्टिक और वो खत्म हो गया हुआ जब आए चार पांच तो लाया हूँ घर में ले आया हूँ तो ऊपर का नीचे जो ऊपर नीचे प्लास्टिक लगते हैं ना वो नहीं है तो अब वो आएगा तो फिर
जीवात्मा तुम निद्रा का त्याग करके उठो यह घटना दिनांक 18 मार्च 2015 की गत रात्रि में सोने के हुए ने अपने मोबाइल में प्रभु जी का प्रवचन चालू या बहुत आश्चर्य की बात प्रवचन चालू किया तथा प्रवचन को सुनते हुए सो गए तथा मोबाइल के अंदर से रात भर एक के बाद एक करके प्रभु जी के प्रवचन चलते रहे क्योंकि उन्होंने मोबाइल को अपने स्लीपिंग बैग के अंदर रखा हुआ था तथा मोबाइल के प्रवचनों के कारण प्रभु जी की नींद में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं प्रभु जी का नियम है कि प्रत्येक दिन प्रातः 2:45 पर उठते हैं तथा प्रातः लगभग 3:20 तक स्नान करके अपने कमरे में वापस आ जाते हैं फिर वे उद्दीन देव को प्रातः लगभग 3:40 पर उठाते हैं परंतु आज एक अत्यंत आश्चर्य की घटना प्रभु जी स्नान करके अपने कमरे में आ चुके थे तथा प्रथम प्रेय के स्लीपिंग बैग के अंदर इस दिन उनके मोबाइल के अंदर से प्रभु जी के प्रवचन एक के बाद एक निकलते जा रहे थे रात पर चलता उस समय पहला आश्चर्य तो यह हुआ कि प्रथम प्रेय का मोबाइल उनके स्लीपिंग बैग के बाहर अंदर से बाहर आए ताकि उसके अंदर से प्रभु जी की आवाज़ में जो प्रवचन निकल रहा था उसके बाद प्रभु जी तथा प्रदुम प्रेय दोनों सुन सकते थे प्रवचन की आवाज़ सुनते ध्यान से प्रवचन की आवाज़ सुनते भी प्रदुम प्रिय आलस्य के कारण अपनी आँखें बंद किए हुए अपने संयम में लेटे हुए उस समय मोबाइल के अंदर से अचानक एक ऐसा प्रवचन निकलने लगा जिसमें प्रभु जी की आवाज में ये सब निशांत काल उस समय को कहा जाता है जिस समय निशा अर्थात रात्रि का अंत होता है। यह समय प्रातः 3:22 से शुरू होता है। जो साधक होते हैं वे इस समय अपनी निद्रा त्याग कर तथा अपनी संयम त्याग कर उठ जाते हैं। वृंदावन में प्रातः 4:30 बजे जो मंगल आरती गाई जाती है उसमें भी ये शब्द गाए जाते हैं, निद्रा छाड़ी उठ जीव। अर्थात हे जीवात्मा, रात्रि समाप्त हो चुकी है अतः तुम अपनी निद्रा को छोड़ो तथा अपनी संयम त्याग कर उठ गए। ये सब तो प्रभु जी की आवाज में टूटे हुए के मोबाइल के अंदर से निकले, परंतु यह एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हो क्योंकि इस समय प्रातः के 3:27 हुए थे तथा मोबाइल के अंदर से जो शब्द निकले उनमें भी यही बात आई थी कि प्रातः 3:22 के बाद साधक को यथाशीघ्र अपनी निद्रा तथा संयम त्याग कर उठ जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने घटना का एक ऐसा योग बनाया कि जिस समय प्रद्युम्न देह को निद्रा तथा संयम त्याग कर उठ जाना चाहिए तथा प्रद्युम्न देह निद्रा तथा संयम को त्याग कर उठ नहीं रहे, ठीक उसी समय प्रभु जी के आवाज में मोबाइल के अंदर से ऐसी बात निकली जो ठीक उसी समय के अनुसार प्रद्युम्न देह को निद्रा तथा संयम त्याग कर उठाने के लिए थी। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अत्यंत अद्भुत घटना योग को देखकर प्रभु जी तथा उनके संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हंस उठे। 7-8 बार मोबाइल चलाया हुआ रात्रि में 2 बार तो ऐसी घटना घटी सेम। एक बार श्लोक मतलब प्रभु जी को जो क्लास देनी थी वही श्लोक उसमें ठीक उसी समय पे आया सवेरे जैसे ही प्रभु जी की आंख खुली, और उसके बाद मैंने मोबाइल रात को कई बार अपने आप बंद हो गया। ये भी एक आश्चर्य था कि लीला नहीं हुई जिन दिनों मोबाइल सुबह तक नहीं चला हो
भगवान
की बैटरी थी फुल बैटरी थी पर वो सब लिखा नहीं है, बड़ा आश्चर्य। श्री कृष्ण तथा बलदेव गुरुकुल में अत्यंत व्रतनिष्ठ थे। अब एक अन्य आश्चर्य की आप प्रभु जी कैलाश वाले मंदिर से द्वारका वाले मंदिर इस्कान मंदिर में प्रातःकाल में प्रवचन देने के लिए गए। अब द्वारका मंदिर में प्रवचन देकर प्रभु जी जिस समय अपने संगियों के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर इष्टान कैलाश वाले मंदिर की ओर आ रहे थे उस समय कुछ इस प्रकार की चर्चा हुई कि प्रद्युम्न प्रिय ने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी दिनांक 15 मार्च 2015 के दिवस पर आपकी पटना शहर के लिए जो उड़ान थी उस उड़ान के द्वारा आपने कार्यक्रम बनाया था कि पटना से राजगिरी नामक स्थान पर जाएंगे। तो शॉर्टकट बताया पटना से राजगिरी नामक स्थान पर जाएंगे। अब चूंकि भय उड़ान रद्द हो गई है अतः आप अगली बार पटना के लिए आपकी जो उड़ान निश्चित होगी उसमें आप पटना से गया जाने का कार्यक्रम बनाइए, मतलब आप जाने की बनाइए। की इस बात पर प्रभु जी ने उत्तर दिया कि पटना के लिए जो भी अगली उड़ान निश्चित होगी उस पर वे पटना से राजगिरी नामक स्थान में ही जाने का कार्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि पहले से ही उन्होंने यह बात निश्चित कर ली है कि राजगिरी नामक स्थान का दर्शन अवश्य करना है। मैंने ये भी बताया मैंने कहा इतनी दूर जाएंगे एक जगह क्या आ जाएंगे अवश्य करना है, तो एक ही जगह जाया जा सकता है, 2 घंटे का इधर से रास्ता है 2-3 घंटे का हाँ जाएंगे फिर
पटना से राजगिरी का रास्ता बनना
है। हाँ राजगिरी नामक स्थान में का दर्शन अवश्य कर इतनी बात तो प्रभु जी ने प्रद्युम्न से कही, परंतु अब एक आश्चर्य की घटना प्रभु जी की गाड़ी कुछ कारणवश रुकी तथा पुनः चली झटका ले गई। अतः गाड़ी में लगी हुई सीढ़ी के अंदर से प्रभु जी की आवाज में जो प्रवचन जिस बिंदु पर रुका हुआ गाड़ी चलती है तो अपने आप सीढ़ी चल रहा रुका हुआ था उसी बिंदु से चलने लगा तथा उस प्रवचन में से ये शब्द निकले, श्री कृष्ण तथा बलदेव जिस समय अपने गुरु के घर में अर्थात गुरुकुल में रहते थे उस समय वे अत्यंत व्रतनिष्ठ थे। यह एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिस समय प्रभु जी ने ऐसी बात कही कि वे पटना से राजगिरी जाने के अपने निर्णय को नहीं बदलना चाहते हैं ठीक उसी समय सीढ़ी के अंदर से प्रभु जी की आवाज़ में यह बात निकली कि श्री कृष्ण तथा बलदेव
अत्यंत व्रतनिष्ठ थे, अर्थात वे अपने निर्णय के पक्के थे। श्री कृष्ण ने घटना का एक ऐसा योग बनाया कि जिस समय प्रभु जी ने राजगिरी जाने का निर्णय को न बदलने की बात करी, ठीक उसी समय सीढ़ी करने से कुछ ऐसी बात निकली जिसके द्वारा प्रभु जी की बात का समर्थन में श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए ऐसे अद्भुत घटनाओं को देखकर प्रभु जी के स्थान को समझे अत्यंत खुश होता है। नौमान नहीं कर सकते अद्भुत समझ का। उस समय नंद महाराज की आयु 88 वर्ष की थी। उनकी अब एक अन्य आश्चर्य की गाड़ी में बैठे विभिन्न प्रेत इस पुस्तक को खोलकर उस लीला साथ में बैठे हुए भक्तों को पढ़कर सुनाने लगे। अब उन लीलाओं को सुनाते हुए विभिन्न प्रेत बिना 11 जनवरी 2015 की ऐसी लीला पर पहुंचे जिसमें यह बात आई थी कि नंद महाराज को जिस समय श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए उस समय नंद महाराज की आयु 88 वर्ष की थी। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना प्रेर ने जिस समय नंद महाराज की आयु 88 वर्ष की उस समय नंद महाराज की आयु 88 वर्ष की थी। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना ने जिस समय नंद महाराज की आयु 88 वर्ष नंद महाराज की आयु में जिस समय नंद महाराज की 88 वर्ष की आयु की बात पढ़कर सुनाई उस समय प्रभु जी की गाड़ी के सामने एक ऐसी गाड़ी आई जिसकी संख्या थी 88-46। फिर उस समय बाद ऐसी गाड़ी आई जिसकी संख्या थी 67-88। फिर उस समय बाद एक ऐसी गाड़ी आई जिसकी संख्या थी 88-88। यह एक अत्यंत आश्चर्य की घटना थी। पहली गाड़ी की जो संख्या थी उसमें 88 की संख्या प्रारंभ में आई, फिर दूसरी गाड़ी की संख्या थी उसमें 88 की संख्या अंत में आई, तथा फिर तीसरी गाड़ी की जो संख्या थी उसमें 88 की संख्या प्रारंभ में भी आई तथा अंत में भी आई। इस घटना से पता चलता है कि श्री कृष्ण इस बात को अत्यंत महत्व देते हैं कि जिस समय में नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे उस समय नंद महाराज की आयु 88 वर्ष की थी। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए ऐसे अद्भुत घटना को देखकर प्रभु जी तथा उनके संगी अत्यंत उत्सुकता का कारण बना। खासी वर्ष की कई बार हो गई, तीन चार अच्छा कुर्ता ले लो एक तो ये है जैसे जेल से बचाए बिना बोले थैली दे दो एक रखने के लिए एक थोड़ा भी ना हो ये तो गाड़ी के लिए इसको फटन इतना नहीं है थोड़ा सा दो चार दिन और चलिए
तो अभी सुबह तो नहीं ना लेना कोई
गाड़ी साफ करने के लिए बहुत अच्छी प्रसाद ले लो
लीला सुनाई पड़ गए
लीला सुनाई दस मिनट तीन मिनट एक तो ये चलता रहा।